arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर कंचन।
हड़प्पा संस्कृति का राजनीतिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन के संबंध में कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। खुदाई में प्राप्त विभिन्न स्रोतों के आधार पर उस समय की तात्कालीन राजनीतिक स्थिति के संबंध में अनुमान लगाया जा सकता है। विद्वानों ने अनुमान के आधार पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। हंटर महोदय के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। सत्ता जनता के प्रतिनिधियों में अधिष्ठित थी। मैके के विचार में मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि के हाथ में था। पिगर महोदय का कहना है कि सिंधु प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। हड़प्पा सभ्यता के योजनाबद्ध नगर निर्माण को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर नगर पालिका जैसी कोई संस्था अवश्य रही होगी। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मूलतः यह विकेंद्रीकृत शासन था। संभवतः राजतंत्र पर धर्मतंत्र की गहरी छाप रही होगी। बाशम महोदय का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र में सड़कों की स्थायी योजना, नाप तौल के बांटों, ईंट के आकार और यहाँ तक कि महानगरों के दृष्टिधार में पूर्णतः एक रूपता पाई जाती है, जिससे यह मालूम होता है कि यहाँ पर अनेक समुदाय के स्वतंत्र राज्य न होकर केवल एक केंद्रीय सरकार थी। हड़प्पा संस्कृति में नगर निर्माण। पहला, नगर योजना। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता नगर योजना प्रणाली थी। खुदाई में प्राप्त हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विशाल नगर थे। इन नगरों का निर्माण सुव्यवस्थित योजना के आधार पर किया गया था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक शहर था जिसमें सामान्य लोग निवास करते थे। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। सिंधु सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि नगरों के निर्माण में पक्के ईंटों का प्रयोग होता था। नगर में भवनों का निर्माण सुनियोजित तरीके से किया गया था। रावी नदी के बाएं तट पर नदी से लगभग 9.60 किलोमीटर दूर हड़प्पा का पूरा स्थल, जिसका पुराना नाम मांट गोमरी है, स्थित है। नगर आयताकार खंडों में विभाजित था। हड़प्पा नगर लगभग 5 किलोमीटर के घेरे में बसा था। यहाँ पर दो प्रमुख टीले मिले हैं। पश्चिम में दुर्ग टीला और पूर्व में नगर टीला स्थित है। हड़प्पा का दुर्ग क्षेत्र सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। दुर्ग का आकार समलंब चतुर्भुज की तरह का था। दुर्ग की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 420 मीटर और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 196 मीटर है। उत्खननकर्ताओं ने दुर्ग के टीले को एबी नाम दिया है। दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर दिशा था तथा दूसरा प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा में था। रक्षा प्राचीर लगभग 12 मीटर ऊंची थी, जिसमें स्थान स्थान पर तोरण तथा बुर्ज बने हुए थे। ईंटों को चुरा लिए जाने के कारण उत्खनन से किसी महत्वपूर्ण भवन के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पा के दुर्ग के दक्षिण में स्थित क्षेत्र में किए गए उत्खनन से मालूम होता है कि सिंधु सभ्यता के पूर्व यहाँ पर एक बस्ती बनी हुई थी। दूसरा, सड़कें। नगर की सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में एक दूसरे को समकोण बनाती हुई काटती थी, जिससे सड़कों के द्वारा नगर कई आयताकार और वर्गाकार भागों में बंट जाता था। सड़कें चौड़ी होती थी। मुख्य सड़क 10 मीटर चौड़ी तथा छोटी सड़कें 2.5 से 3.5 मीटर चौड़ी होती थी। नगर की प्रमुख सड़क 33 फीट तक चौड़ी थी। तीसरा, भवन निर्माण। सिंधु सभ्यता के भवनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला सार्वजनिक भवन और दूसरा निजी भवन। डॉक्टर राजबली पांडे ने भवनों को चार भागों में विभक्त किया है। पहला नागरिकों के रहने के मकान, दूसरा सार्वजनिक भवन, तीसरा सार्वजनिक स्नान कुंड, चौथा मंदिर धर्मस्थल। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की ईंटों के मकान बने होते थे। मकान की नींव गहरी और चौड़ी होती थी। मकान की दीवारें मोटी और मजबूत ईंटों की बनी होती थी। घर की फर्श में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। मकान दो मंजिल के होते थे तथा नीचे की मंजिल से ऊपर की मंजिल में जाने के लिए सीढ़ियां होती थी। मकान में पर्याप्त खिड़की और दरवाजे होते थे जिससे मकान में हवा और प्रकाश पर्याप्त मात्रा में आते थे। दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। मकान के मध्य में एक आंगन होता था जिससे एक तरफ रसोई घर होता था जिसमें चूल्हे ईंटों से बने होते थे। प्रत्येक मकान में स्नानागार होता था। इन स्नानागारों में मिट्टी के बर्तनों में पानी रखा जाता था। चौथा जल निकास प्रणाली। नगर के सभी छोटे व बड़े मकानों में स्नानघर होते थे। कालीबंगा के कई मकानों में अपने अपने कुएं थे। मकान से गंदा पानी नालियों में जाकर मिलता था। सड़क के किनारे नालियां बनी होती थी। ये नालियां पक्की ईंटों की बनी होती थी। ईंटों को जोड़ने के लिए मिट्टी मिले चूने का प्रयोग किया जाता था। कम चौड़ी नालियां ईंटों से और अधिक चौड़ी नालियां पत्थर के टुकड़ों से ढकी होती थी। ऊपर की मंजिल का गंदा पानी नीचे लाने के लिए मिट्टी के पाइप का प्रयोग किया जाता था। नालियों में जगह जगह कचरा रोकने के लिए सोक पिट बने हुए थे। नालियों के संबंध में गार्डन चाइल्ड ने लिखा है कि सुनियोजित सड़कों तथा अति उत्तम नालियों की व्यवस्था से, जिससे निरंतर सफाई हुआ करती थी, ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर कोई नगर पालिका थी जो निरंतर चौकसी रखती थी। प्रत्येक घर में स्नानागार का पानी, गंदे पानी और वर्षा जल निकालने की समुचित व्यवस्था थी। पांचवा कुएं। सिंधु घाटी के लोगों ने जल के नियमित स्रोत के लिए कुओं का प्रबंध किया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई में ऐसे कुएं मिले हैं जिनकी चौड़ाई 2 फीट से 7 फीट तक है। कुओं की जुड़ाई, सफाई और मजबूती दर्शनीय है। सार्वजनिक कुओं के अतिरिक्त जो जनता के लिए बनाए होते थे, कई घरों में व्यक्तिगत कुएं भी होते थे। छठवा स्नानागार। मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक विशाल स्नानागार मिला है। यह लगभग 39 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है। स्नानागार के चारों ओर रास्ते, 3 ओर बरामदे और 8 कमरे हैं। स्नान के लिए स्नानागार में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। चबूतरे और ऊपर छत में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। यहाँ का जल पास स्थित कुएं से भरा जाता था जिसे खाली भी किया जा सकता था। ठंडे और गर्म जल भरे जाने की भी व्यवस्था थी। स्नानागार के निकट एक भवन मिला है जो कि संभवतः हमाम था और जिसमें जल को गर्म करने का प्रबंध था। डॉक्टर जय नारायण पांडे के अनुसार स्नान कुंड के पूर्व में स्थित एक कमरे में ईंटों की दोहरी पंक्ति से निर्मित एक कुआं मिला है। स्नानागार के लिए पानी की पूर्ति का यही मुख्य स्रोत था। स्नान कुंड के दक्षिण पश्चिम की ओर तोड़ेदार मेहराब वाली पटी हुई नाली से स्नान कुंड के जल की निकासी की व्यवस्था थी। स्नानागार की भव्यता, विस्तार प्रथा, महत्वपूर्ण स्थिति से इसका विशिष्ट सार्वजनिक महत्व परिलक्षित होता है। सातवां अन्न भंडार। हड़प्पा संस्कृति का आर्थिक आधार दृढ़ था। नगर व्यापार, व्यवसाय और उद्योग धंधे का केंद्र था। अनुमानतः लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती था। उत्खनन में काले पड़ चुके गेहूं के और जौ के नमूने मिले हैं। हड़प्पा के अन्नागारों का विशेष महत्व है। हड़प्पा में मिले चबूतरे के बीच में एक छेद मिला है जिससे संभवतः लकड़ी की ऊखल लगाई जाती थी। यहाँ राख, जले हुए गेहूं के दाने और भूसा के तिनके मिले हैं। यह अनाज पीसने का स्थान रहा होगा। मोहनजोदड़ो का अन्नागार विशालतम भवन है जो 55 मीटर लंबा, 37 मीटर चौड़ा और 27 खंडों से युक्त है। बाहर सामान चढ़ाने उतारने की व्यवस्था और हवा प्रकाश की व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया है। निश्चित रूप से इस विशाल अन्नागार का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता में उपयोगितावादी दृष्टिकोण का बाहुल्य रहा है। यहाँ के भवनों में अलंकरणों का अभाव मिलता है। इस नगर योजना में विविधता का अभाव था। भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ और जुड़ाई का कार्य मिट्टी के गारे से किया जाता था। कारीगर ईंट जुड़ाई कला में दक्ष थे। भूतल में ईंट का प्रयोग होता था और ऊपर की मंजिल में लकड़ी का उपयोग होता था। हड़प्पा संस्कृति का विनाश कैसे हुआ, आओ बच्चों अब ये जानते हैं। मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता 1800 ईसा पूर्व के पश्चात भी बनी रही, पर हड़प्पा की नगर संस्कृति लगभग उसी समय लुप्त हो गई थी। जितना कठिन हड़प्पा संस्कृति के उदय को जानना है, उतना ही कठिन उसका समाप्त होना जानना है। इस संस्कृति के विनाश के संबंध में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। इतिहासकारों ने इस सभ्यता के अंत के संबंध में अलग अलग मत दिए हैं। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का विनाश इन कारणों से हुआ होगा। पहला, बाढ़। हड़प्पा संस्कृति के विनाश का कारण बाढ़ रहा होगा। अत्यधिक वर्षा के द्वारा समृद्ध नगर नष्ट हो गए होंगे। प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री सहानी का मत है कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण जल प्लावन था। दूसरा, जलवायु परिवर्तन। संभवतः जलवायु में अचानक परिवर्तन आ गया हो। वर्षा कम होने लगी हो, मिट्टी की उर्वरता कम हो गई हो और अनावृष्टि आदि के कारण इस फलती फूलती सभ्यता का अंत हो गया हो। सिंधु नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित कर दिया हो जिससे पानी की कमी से सिंधु वासियों की मृत्यु हो गई हो। तीसरा, अकाल और महामारी। पानी की कमी व भूमि की उर्वरता कम होने के कारण संभवतः सिंधु क्षेत्र में अनाज की उपज कम हो गई हो जिससे अकाल पड़ गया हो। कोई संक्रामक रोग महामारी के रूप में फैल गया हो जिससे यह सभ्यता समाप्त हो गई होगी। चौथा, भूकंप। भूगर्भ में हुए परिवर्तनों के कारण हो सकता है भूकंप आया हो जिससे इस सभ्यता का अंत होगा हो। पांचवा, बाह्य आक्रमण। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर का विचार है कि सिंधु सभ्यता के विनाश के लिए आर्यों का आक्रमण उत्तरदायी है। खुदाई में प्राप्त अस्थि पंजरों से कुछ कंकालों में पैने हथियारों द्वारा चोट के निशान मिले हैं। चूंकि सिंधुवासी शांति प्रिय थे इसलिए आर्यों या अन्य बाह्य आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर पाए हो। संभवतः इसी कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई हो। अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार इन कारणों में से किसी एक कारण से हड़प्पा संस्कृति का विनाश हुआ होगा।
अरपा रेडियो.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।